हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। भैया का कमरा ऊपर है, चलिए मैं आपको बताती हूँ, गीता दी ने सुनैना से कहा और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगी। गीता के साथ चलते हुए सुनैना ने पूरे घर पर एक नज़र डाली। अंदर से वो काफ़ी खूबसूरत और एकदम मॉडर्न स्टाइल का बना हुआ घर था। वो काफ़ी बड़ा और सुसज्जित भी था। इस वक्त सुनैना उस घर के हॉल में खड़ी थी जहाँ का पूरा फर्नीचर बहुत ही खूबसूरत था। हॉल के एकदम बीच में सोफ़ा और सेंटर टेबल रखी हुई थी। थोड़ा सा दूर एक साइड में किचन दिख रहा था और दूसरी तरफ दो या तीन कमरे बने हुए थे। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए सुनैना की नज़र उन कमरों पर पड़ी। उसने गीता दी से उत्सुकतावश पूछ ही लिया, ऊपर वाला कमरा मेरा है तो फिर यहाँ पर इन कमरों में कौन रहता है? सुनैना अब तक समझ चुकी थी कि गीता दी यहाँ पर काम करती हैं और आदित्य से उम्र में बड़ी हैं, इसलिए वो उन्हें दी बोलती है। ये मेरा कमरा है और वो गेस्ट रूम है और वो रवि सर का कमरा है। कभी कभी जब आदित्य भैया की हालत ज़्यादा ख़राब होती है तो रवि सर को यहीं पर रुकना पड़ता है उन्हें संभालने के लिए। आपको तो पता ही होगा ये सब। गीता के सवालों का जवाब देते हुए गीता ने एकदम सहजता से कहा। उसे लगा था कि शायद सुनैना को आदित्य के बारे में सब कुछ पता है और सब कुछ जानते हुए ही सुनैना ने आदित्य से शादी की है, लेकिन गीता इस बात पर यकीन नहीं कर पाई। सुनैना ने बड़ी मासूमियत से अपना सिर हिलाया। तब जाकर गीता को समझ आया कि शायद सुनैना आदित्य के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती है। इसलिए गीता ने भी आगे कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया। सीढ़ियों से ऊपर पहुंचकर थोड़ा आगे गलियारे में चलते हुए एक कमरे के आगे रुककर गीता ने उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए सुनैना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये है भैया का कमरा और अब से आपका भी, भाभी जी। आप मुझे मेरा नाम लेकर बुला सकती हैं, सुनैना नाम है मेरा। गीता का इस तरह बार बार उसे भाभी कहकर बुलाना सुनैना को काफ़ी अजीब लग रहा था, इसलिए उसने गीता को अपना नाम बताते हुए कहा। जी सुनैना मैडम, गीता ने इस बात पर सुनैना से कोई बहस नहीं की और उसे उसके नाम से बुलाती हुई बोली। सुनैना ने भी आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अभी उसे ज़्यादा नहीं जानती थी और चुपचाप कमरे के अंदर चली गई। सुनैना के कमरे के अंदर जाने के बाद गीता ने दरवाज़ा आधा बंद किया और वहां से उतरकर नीचे आ गई। सुनैना कमरे के अंदर आई, उसने देखा कि कमरा बहुत ही बड़ा और आर्टिस्टिक बना हुआ था, किसी भी नॉर्मल कमरे से बहुत ही ज़्यादा बेहतर था वो। उस वक्त मोगरे, गुलाब के लाल सफ़ेद फूलों के साथ की गई सजावट और पूरे कमरे में जलती हुई खुशबूदार सेंट कैंडल्स के साथ तो वो कमरा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। कमरे की लाइट्स ऑफ थीं और इस वक्त सिर्फ मोमबत्तियां जलने का ही उजाला उस कमरे में था, लेकिन फिर भी सुनैना को सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। सुनैना अपने साथ अपने एक बड़े से हैंड पर्स के अलावा कुछ भी नहीं लाई थी। उस पर्स में उसकी ज़रूरत का कुछ सामान था, शायद उसके पैसे, मोबाइल और चार्जर वगैरह ही। उसने अपना वो बैग बेड के पास रखे साइड टेबल पर रख दिया और स्विच ढूंढने लगी लाइट ऑन करने के लिए, क्योंकि ये सब सजावट भले ही उसके लिए ही की गई हो, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जब वो इस शादी के लिए ही राजी नहीं थी तो शादी के बाद ऐसे किसी रिश्ते की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर आदित्य भी इतना ज़्यादा नशे में था कि उससे तो बात करना ही बेकार समझती थी सुनैना इस वक्त, और वो अभी फ़िलहाल यहाँ पर था भी नहीं। तभी सुनैना ने सामने रखा एक खूबसूरत सा एंटीक कैंडल स्टैंड अपने हाथ में उठा लिया और उसे लेकर दीवार की तरफ बढ़ी। उसे सामने की दीवार पर एक स्विच बोर्ड नज़र आया। उस स्विच बोर्ड के सारे बटन ऑन करते हुए आखिरकार सुनैना ने कमरे की लाइट भी ऑन कर दी। फिर बेड की तरफ बढ़ते हुए उसने देखा कि बेड पर रेड रोज पेटल्स से बेडशीट पर एक हार्ट शेप बनाया हुआ है। सुनैना ने काफ़ी गुस्से से उस गुलाब की पंखुड़ियों से बने हार्ट शेप को पहले तो कुछ देर निहारा, फिर आगे बढ़कर अपने हाथों से उसने सारी पंखुड़ियां एक किनारे कर दीं और बेड पर नींद आलसी बैठ गई। क्या है ये सब और क्यों है? शादी नहीं बर्बादी है ये मेरे लिए। मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, मेरे सारे प्लान, फ्यूचर सब कुछ बर्बाद होकर रह गया है सिर्फ एक शादी की वजह से। इसलिए मैं नहीं मानती इस शादी को और नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ भी। कभी स्वीकार नहीं करूंगी मैं इस जोर जबरदस्ती से बंधे रिश्ते को। बैठ के आसपास की गई फूलों की सजावट को अपने हाथ से बिखेरते हुए सुनैना की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते रोते जमीन पर ही बैठ गई। आदित्य कुछ देर के बाद वापस हॉल में आया और फिर सीधे अपने कमरे की तरफ सीढ़ियों पर ही बढ़ने लगा। तभी उसने गीता दी को आवाज लगाते हुए उनसे सुनैना के बारे में पूछा। गीता ने आदित्य को बताया कि वो ऊपर कमरे में है। ओके, बोलते हुए आदित्य ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और गीता भी वापस अपने कमरे की तरफ ही चली गई। सुनैना थोड़ी बहुत सजावट बिगाड़ने के बाद जमीन पर बैठी घुटनों में अपना मुंह छुपाकर रो रही थी। तभी उसे दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती हुई उसी कोने में उठकर खड़ी हो गई जहाँ पर बैठकर वो रो रही थी। उठकर खड़े होते ही उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। उसने किसी को अंदर आते हुए देखा। ध्यान से देखा तो वो आदित्य था, जो कि लड़खड़ाते कदमों और बिखरे हुए बालों के साथ और अपना कोट अपने हाथ में पकड़े हुए कमरे के अंदर आया था। कमरे के अंदर आते ही उसने एक नज़र सुनैना पर डाली और जमीन पर बिखरी हुई सारी सजावट देखी। फिर उसने अपना कोट बेड पर फेंक दिया और सुनैना की तरफ ही बढ़ने लगा क्रमशः।